हाँ, पहले ही कहा जा चुका है कि संभोग इच्छा प्रकाशक सचेष्ट व्यापार हाव कहे जाते हैं। प्रेमोद्दीन के कार्य में इसकी महत्ता का विशेष आकलन किया जाता है। कुछ आचार्यों ने हाव के भेद बतलाए हैं, पर वे भ्रामक हैं। जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, हाव को विभाव के अंतर्गत ही मानना अधिक संगत है। हाव एक प्रकार का उद्दीपन है जो प्रेमी के हृदयस्थ रतिभाव को उद्दीप्त करता है। संयोग श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर यह प्ले इंस्टिंक्ट की कोट में रखा जाएगा। प्रेम का यह क्रीड़ा परक रूप सामंती जीवन की विलासिता के अनुरूप ही था, इसीलिए बिहारी ने इस तरह के वर्णनों में खूब रुचि ली है। देखिए, एक त्रिबली ना भी दिखाए गए, सिर ढकी सकुच समाई, गली अली की वोट हुए, चली भली विधि जाय। दो, देख्यो अनदेख्यो कियो, अंग अंग सबै दिखाए, बैठत इसी तन में सकुच, बैठी चितै लजाए। ऐंचत इसी चितवन चितै, भई ओट अलसाए, फिर उझकनि कौ मृग नयनि, त्रिगनि लगनिया लाए। चार, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनि हँसै, दैन कहे नटि जाय। पाँच, भौहनि त्रासति मुँह नटति, आँखिन सो लपटाति, ऐँचि छुड़ावति करु इंची, आगे आवत जाति। उपर्युक्त सभी उद्धरणों के व्यापार संभोगेच्छा सूचक हैं। चित्रों की सफाई पर भी मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना है। पहले उदाहरण में व्यापार की स्पष्टता, त्रिबली और नाभि का प्रदर्शन बहुत आकर्षक नहीं कहा जा सकता। आजकल तो त्रिबली और नाभि का प्रदर्शन फॉरवर्ड होने की निशानी मानी जाती है। यदि यह सांस्कृतिक सुरुचि का द्योतक है तो बिहारी की नायिका को दोषी ठहराना आलोचक का पिछड़ापन माना जाएगा। क्यों? जो लोग भारतीय परंपरा का सामान्य ज्ञान रखते हैं, वे उपर्युक्त चित्रण की सुरुचिपूर्णता में संदेह प्रकट करेंगे। उदाहरण संख्या दो की नायिका के व्यापार अधिक जटिल बौद्धिक तथा सांकेतिक हैं। तीसरे दोहे की सांकेतिकता थोड़ी और सूक्ष्म है। चौथे की प्रेम क्रीड़ा में नाटकीय तत्व की प्रचुरता के साथ प्रेम की गहराई भी परिलक्षित होती। पांचवें में क्रीड़ात्मकता अधिक है, पर परस्पर विरोधी क्रियाओं द्वारा इस चित्र को भी थोड़ा गूढ़ बना दिया गया है। पहले दोहे में जो चित्र उरेहा गया है, उसकी अपेक्षा अन्य चित्र अधिक प्रभाव उत्पादक बन पड़े हैं, क्योंकि उनके बोध के लिए अपेक्षाकृत व्यापक बौद्धिक मानसिक संगठन की आवश्यकता है। जिस चित्र के लिए, उसके बोध के लिए जितने व्यापक मानसिक संगठन की जरूरत होगी, वह उतना ही प्रभावीष्ण और संवेदनात्मक होगा। प्रेम क्रीड़ा के अन्य रूपों में दाम्पत्य क्रीड़ा, चोर मिहिचनी का खेल, पारस्परिक आलिंगन चुंबन, आंख आंख का खिलवाड़, घूंघट की ओट की चोट आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें दाम्पत्य क्रीड़ा के चित्र बहुत ही मनोरम और आकर्षक बन पड़े हैं। हंसी ओठन बीच कर उचय, किए निचौ हैं नयन, खरे अरे प्रिय के प्रिया, लगी बिरी मुख दैन। नाक मोरी नाहौ करे, नारी निहोरें ले, ध्रुवट ओठ बिय आंगुरिन, बिरी बदन पिय दे। पहले दोहे में विश्रब्ध नौढ़ा नायिका की चेष्टा वर्णित है। अब उसे नायक का इतना अधिक विश्वास हो गया है कि वह उसे पान खिलाने के लिए पास जाने लगी है। ओठों के बीच हंसकर हाथ ऊंचा और आंख नीची करके प्रिय के मुख में पान देती है। मध्यवर्गीय शालीनता से अपरिचित व्यक्ति इसके पूर्ण सौष्ठव को स्वायत्त नहीं कर सकता। संकोच, लज्जा और विश्वास का संगम चित्र को आत्यंतिक ऐन्द्रिय मनोरमता प्रदान करता है। दूसरे चित्र में नायक नायिका को पान खिलाना चाहता है। वह नाक सिकोड़ती हुई कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। नायक बेचारा बार बार आग्रह करता है। नायिका उसका पान मुंह में लेती हुई ऐसा भाव प्रकट करती है मानो उस पर बड़ी कृपा कर रही है। इसी समय नायक उसके कोमल अधरोष्ठों को छू ले देता है। इन दोनों चित्रों के सारे व्यापार स्वाभाविक हैं, जीवन से गृहीत हैं, इसलिए इनका सौंदर्य भी मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बन पड़ा है। प्रेम क्रीड़ा के लिए चोर मिहिचनी खेल की भी व्यवस्था की की गई है। इस खेल का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, यह एक बहाना मात्र है जिसमें गाढ़ा लिंगन की खुली छूट मिल जाती है। दो चोर मिही चनी खेल न खेल अघात, दुरत हिए लपटाए के छुअत हिए लपटात। अटा पर चढ़ी हुई नायिका की क्रीड़ा का एक शोभन रूप देखिए। छिनक चलत ठटकत छिनक भुज प्रीतम गल डार, चढ़ी अटा देखत छटा बिज्जू छटा सी नारी। बिजली की ज्योत की तरह लावण्यवती नायिका घिरे हुए बादलों की शोभा निहार रही है। प्रीतम के गले में बाहें डालकर क्षण भर कभी चलती है और क्षण भर कभी ठिठक जाती है। भुज प्रीतम गलटार की व्यंजना घटा के प्रसंग में कितनी गूढ़ और मनोवैज्ञानिक बन पड़ी है। क्रीड़ा में चतुराई का बहुत योग होता है, उसका भी एक उदाहरण देखिए। लड़िका लय पय के मिशनी लंगर मोढिग आय, गय अचानक बांसुरी छाती छैल छुआय। अब चुंबन का एक दृश्य देखिए। अंगुरिन उचि अरु भीति दय, उलमी चितय चखलोल रुचिसों तुह दूहुन के चूमे चारु कपोल। ऐसे सुयोग नगर निवासी नायक नायिका को ही सुलभ हो सकते हैं। विहारी सत्सई में प्रेम क्रीड़ा का बहुत बड़ा भार आँखों के मत्थे पड़ा है, प्रेम के व्यापार में है भी आँखों का बहुत ही महत्वपूर्ण योग। ये आँखें भी साधारण आँखें नहीं हैं, वे रस श्रृंगार मंजन की खंजन भंजन दैन हैं। दूसरे शब्दों में हाव भाव कटाक्ष आदि में पूर्ण दक्ष हैं। प्रेम को मादक बनाने के लिए नेत्रों का बड़ा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका अपांग वीक्षण। इसीलिए सखी एक दोहे में नायिका की प्रशंसा करती हुई कहती है, अनियारे दीरघ द्रिगनी कितीन तरुणी समान, वह चितवनी औरे कछु जिह बस होत सुजान। इस तरह की आंखों के कुछ व्यापार दृष्टव्य हैं। एक, इसी भी रहूं भेद कै कितहु हुए इत आय, फिरे डीठ जुर डीठ सों सबकी डीठ बचाए। दो, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। तीन, जुरे दुहुन के दृग झमकी रुके न झीने चीर, हल्की फौज हरौल ज्यों परत गोल पर भीड़। भीड़ भब्भड़ में लोगों की आंखें बचाकर अपने प्रिय से आंखों आंख बात कर लेना, मन की रीझ खींच को संकेत पूर्वक व्यक्त कर देना, पारदर्शी घूंघट के उस पार जाकर प्रिय की आंखों से मिल लेना, आंख के इन व्यापारों से सभी परिचित हैं। सूरत मूलक मुद्राएं, सूरत मूलक मुद्राओं के चित्र भी सत्सई में ढेर के ढेर मिल जाएंगे। क्रीड़ाओं की अंतिम परिणत भी तो यही है, और यही तो है अवकाश भोगी सामंती जीवन का चरम लक्ष्य। सामंती नायक की एक उक्ति देखिए और दूसरे की उक्ति, यह हो भी नहीं सकती। चमक तमक हाँसी ससक मसक झपट लपटान, ए जिहि रति सो रति मुकति और मुकति अतिहान। अर्थात जिस रति में चमक तमक लपट छपट आदि हों, वही रति मुक्ति के समान परमानंद दायिनी है, दूसरी मुक्ति तो अनिष्ट कारिणी है। कुछ मुद्राएं देखिए। एक, सकुच सरक पिय निकटते मुलक कछुक तन तोर, कर आचर की ओट करी जमुहानी मुह मोर। दो, समरस समर सकोच बस बिवस न ठिक ठहराय, फिर उझकति फिर दुरति दूरी दूरी उझकति जाए। इन पर टिप्पणियां व्यर्थ हैं। सात्विकानुभाव, संयोगकालीन अवस्था में आंतरिक आनंद के फल स्वरूप जो श्वेत कंप रोमांच वैवर्ण्य आदि दिखाई पड़ते हैं, उनकी गणना सात्विक अनुभवों में की जाती है। आत्मा में अंतर्भूत रस को प्रकाशित करने वाला अंतःकरण का धर्म विशेष सत्व कहलाता है। इसी सत्व गुण से उत्पन्न शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। यह अंतःकरण का धर्म विशेष सभी रसों में दिखाई पड़ता है, पर प्रत्येक के अपने अपने कारण होते हैं। इन सात्विक अनुभवों का प्रादुर्भाव प्रायः प्रिय के दर्शन श्रवण और स्पर्श से होता है। इन सभी अवस्थाओं में स्नायुगत कुछ ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिनका प्रकाशन श्वेत कंप आदि के द्वारा देखा जाता है। मनसा द्वारा दर्शन श्रवण आदि से जिन प्रभावों को प्राप्त किया जाता है वे हमारे शारीरिक संगठन को अनेक ढंग से प्रभावित करते हैं। परिणामतः उनकी प्रतिक्रियाएं अनेक रूपों में देखी जाती हैं। प्रेम के संबंध में स्पर्श का अधिक प्रभाव देखा जाता है। स्पर्श त्वगिंद्रिय का गुण है। त्वचा स्नायु तंतुओं धमनियों और आंतों आदि की रक्षा ही नहीं करती बल्कि बाह्य संसार से हमारा संपर्क भी स्थापित करती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे सर्वाधिक प्राचीन और मूलभूत ज्ञानेन्द्रिय कहा है। यह बाह्यानुभूतियों का संदेश तुरंत ही मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यौन आवेगों की स्थिति स्पर्श ज्ञान पर इतनी अधिक निर्भर है कि प्रेम संबंधी संवेगों के संदर्भ में इसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। स्पर्श का विद्युत प्रवाह सारे रोम कूपों में विचित्र सिहरन भर देता है। रहो गुही बेनी लख्यो गुहिबे के त्योनार लागे नीर चुचान ए नीठ सुखाए पार। नायक नायिका की चोटी गूंजता है। स्पर्श से दोनों को स्वेद हो आया है और नायिका की वेणी के बाल भींग गए हैं। अपना सात्विक छिपाने के निमित्त नायिका कहती है, रहने दो गूंज चुके वेणी, देख लिया तुम्हारा ढंग। इतनी कठिनाई से मैंने बाल सुखा रखे थे, वे फिर गीले हो गए। इसमें प्रेम की जो व्यंजना की गई है वह श्लाघ्य है, पर सात्विक की किंचित अस्वाभाविकता के कारण यह उतना प्रभावोत्पादक नहीं बन पड़ा है। एक साथ ही कंप, स्वेद, रोमांच और अश्रु सात्विक अनुभवों को एक अत्यंत स्वाभाविक संदर्भ में देखिए। खेलन चोर मिही चनी आज गई हुतो पाछिले ध्योंस की नाई आली कहा कहो एक भई मति राम नई यह बात तहाई। एक ही भवन दूरे इक संग ही अंग सौ अंग छुआयो कन्हाई। कंप छुट्यो घन स्वेद बढ़्यो तन रोम उठ्यो अखिया भरी आई मतिराम। मतिराम के सवैये में बहुत से सात्विकों को एक स्थान पर एकत्र कर दिया गया है, इसलिए इसका काव्य श्रेष्ठ नहीं है। इसकी श्रेष्ठता नायिका की मनोदशा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कराने में है। दो मन स्थितियों की तुलना में है, उनके अंतर संबंधों के स्थापन में है। पिछले ही दिनों की भांति नायिका चोर मिहिचनी खेलने के लिए आज भी गई थी, लेकिन आज के खेल में उसे एक अभूतपूर्व अनुभूति हुई। इस अनुभूति के कारणों को समझने में वह असमर्थ है, क्योंकि पिछले दिनों तो वह बराबर चोर मिहिचनी खेला करती थी, पर इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। आज क्या बात हो गई? उसके साथ एक ही घर में नायक भी छिप गया और जानबूझकर अपना शरीर उसके शरीर से छुला दिया। शरीर का स्पर्श करते ही उसे रोमांच हो आया। शरीर पसीने पसीने हो गया, आंखों में आंसू की बूंदें छा गईं। इस तरह का स्पर्श तो बहुत होता रहा है, पर आज ही क्यों ये सात्विक उभर आए? ये सात्विक उस अवस्था विशेष के सूचक हैं जिसमें प्रेम विकार अनजाने ही उत्पन्न होने लगते हैं। नायिका है भी तो अज्ञात यवना, किंतु बिहारी के दोहे और मतिराम की सवैया का तुलनात्मक विवेचन नहीं किया जा सकता। मतिराम ने उक्त सवैया अज्ञात यवना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। वह अपने आप में नायिका के अज्ञान और भोलेपन को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करता है। यह भोलापन पाठकों को प्रसन्न कर देता है, उसके अंतर्मन को गुदगुदा लेता है, उनकी ऐन्द्रिय चेतना को तीव्र बना देता है। बिहारी का दोहा दूसरे परिप्रेक्ष्य की सृष्टि करता है, उसमें व्यापकता नहीं है, वक्रता है जो प्रेमाधिक्य की व्यंजना में सक्षम है। एक दूसरे दोहे में बिहारी ने स्पर्श जन्य सात्विक की जो सृष्टि की है वह अपेक्षाकृत गहरी संवेदना उत्पन्न कर सकी है। स्वेद सलिल रोमांच कुश गहि दुलही अरुनाथ हियव दियो संग हाथ के हथ लेवा ही हाथ। पाणिग्रहण संस्कार के अवसर पर दुल्हन दूल्हे के स्वेद रूपी जल और रोमांच रूपी कुश ग्रहण करके हाथ के साथ ही अपना अपना हृदय भी एक दूसरे को सौंप दिया। पाणिग्रहण की लौकिक रीति कुष्ठ में जल और कुश द्वारा संकल्प होने की क्रिया कुष्ठबंध के पूर्व ही दोनों मानसिक संकल्प से एक दूसरे के हो गए। मानसिक चेतना और उसकी शारीरिक क्रिया का कितना सूक्ष्म चित्रण है, इसमें व्याप्ति तो नहीं है पर संवेदना की गहराई जरूर है। अब दर्शन जन्य सात्विक का उदय देखिए। दिगत पानी दिगुलात गिरी, लखि सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। उंगली पर गोवर्धन धारण किए हुए श्री कृष्ण ने ज्यों ही किशोरी राधिका को देखा त्यों ही उन्हें कंप सात्विक हुआया। इस कमबख्त सात्विक ने धोखे का काम किया, बड़े ही असमय में दिखाई पड़ा। हाथ के हिलते ही पहाड़ भी हिला और सारा ब्रज विकल हो उठा। श्री कृष्ण लज्जा से लाल हो गए। श्रवण जन्य सात्विक का उदाहरण शेष रह गया, उसे भी देखिए। आय मीत विदेश ते का कहो पुकार, सुन हुलसी बिहसी हसी दो दुहनी निहार। इतना सुनना था कि मित्र विदेश से आ गया है और दोनों प्रेमिकाएं प्रफुल्लित हुई, बिहस पड़ी, फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। प्रिय के प्रति जो मानसिक लगाव है उससे उनका खिल जाना सात्विक ही है। यद्यप शास्त्रीय दृष्टि से इसमें कुछ खामी दिखाई पड़ सकती है पर प्रफुल्लता भी तो अंतःकरण के धर्म से ही संबद्ध है। बिहारी ने कुछ ऐसे संदर्भों की भी सृष्टि की है जिसमें सात्विकों का प्रादुर्भाव न तो दर्शन से होता है, न श्रवण से और न स्पर्श से, केवल सामीप्य बोध की भावना ही उनमें सात्विक अनुभव उत्पन्न करने में समर्थ है। यह विशिष्ट संदर्भ सात्विकों को जो परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है वह काव्य को सहज ही औदात्यपूर्ण बना देता है। मुँह उखार प्यव लख रहो रहो न गौ मिस सैन, फर के ओठ उठे पुलक गए उघर जुरी नैन। इस दोहे में उस नायिका का चित्र अंकित किया है जो सोने का बहाना करके मुंह ढककर आंखें बंद करके सोई हुई है। नायक ने वास्तविकता जानने के लिए उसका मुंह उघार कर देखा। अब नायिका से रहा नहीं गया, उसके होंठ फड़क उठे, रोएं भरभरा गए, आंखें खुल गईं और प्रीतम की आंखों से जा मिली। नायिका ने नायक को देखा नहीं है, संभवतः मुंह उघार कर देखते समय नायक के हाथों का स्पर्श भी नहीं हो पाया है, पर मन ही मन वह उसके आत्यंतिक सामीप्य का अनुभव कर रही है। केवल इस मनोभाव ने उसके संवेगों को इस तरह आंदोलित कर दिया कि उसके शरीर पर उसके प्रतीक रूप में अनुभाव अंकित हो उठे। इस प्रसंग में देव का एक सवैया उद्धृत किए बिना यह प्रकरण कुछ अधूरा सा लगता है। गौने के चार चली दुलही गुरु लोगन भूषण भेष बनाए, सील सयान सखीन सिखायो बड़े सुख सासुरेहु के सुनाए। बोलियो बोल सदा हसी कोमल जे मन भावन के मन भाए, यो सुनी ओछे उरो जन पय अनुराग के अंगुर से उठी आए। गौना जाने वाली दुल्हन को सखियों ने सयानी सखियों ने बहुत कुछ सीख दी। कहा कि सखी तुम हंस करके कोमल वाणी से बोलना जो प्रीतम के मन को भाने वाला हो। इतना सुनना था कि मन का अनुराग रोमांच के रूप में फूट पड़ा। अभी वास्तविक मिलन नहीं हुआ है, अभी स्थित सर्वथा मानसिक धरातल पर है, पर मन के साथ शरीर का ऐसा सहज संबंध है कि दोनों में एक साथ चेतना उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में यह कल्पनाजन्य अनुभव का एक रूप है। प्रीतम का काल्पनिक सामीप्य रोमांच उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ है। कहना न होगा कि देव का यह अनुभव चित्र काफी गूढ़ और संवेगात्मक है, पर बिहारी के उपर्युक्त दोहे में कई अनुभव जो एक दूसरे से पूर्णतः संबद्ध हैं वे अपेक्षाकृत अधिक नाटकीय और संवेद्य हैं। कल्पना जन्य अनुभव की तरह स्मृति जन्य अनुभव भी होता है। स्मृतियां कई तरह से जागृत होती हैं। काव्य में प्रायः देखा जाता है कि प्रिय से संबद्ध कोई वस्तु पाकर प्रेमी पुलकित हो उठता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रिय मिल गया हो। स्वयं वस्तु कोई प्रेम पर चेतना उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती, उस वस्तु पर प्रिया कुष्ठ में या प्रेमी अपने प्रिय की भावना को प्रक्षेपण प्रोजेक्शन कर लेती है। मैं यह तो ही में लखी भगत अपूरब बाल, लखी प्रसाद माला जुभव तन कदम्ब की माल। एक अंतरंग सखी ने नायिका को बहिरंग सखियों के बीच ठाकुर जी का प्रसाद कहकर एक माला दी। नायक की माला पहनते ही नायिका को रोमांच हो आया। उसे देखकर परिहास करती हुई बहिरंग सखी कहती है, इस स्मितजन्य अनुभव को कहीं कहीं बिहारी ने और भी सूक्ष्म स्तर पर देखा और परखा है। ऊंचे चितय सराहियत गिरह कबूतर लेत, झलकत दृघ मुलकत बदन तन पुलकित की हेत। यद्यपि इस दोहे के अवतरण में रत्नाकर जी ने बतलाया है कि नायिका अटारी चढ़े हुए कबूतर उड़ाने वाले नायक को देखकर पुलकित होती है, पर नायक को देखने का अनुमान नहीं भी किया जा सकता है। नायिका केवल अपने प्रिय के कबूतर को देखकर ही पुलकायमान हो सकती है। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से यह कल्पना अधिक रमणीय प्रतीत होती है।